देश्वर, प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सिद्धेश्वरी, प्यारी मम्मा की, आप सभी होवनहार सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, हमारे आप सभी अति प्रिय बहनों भाइयों को बहुत बहुत प्रेम और सम्मान। हम सबकी यही शुभ भावना है कि हम सब सिद्धेश्वर बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सिद्धि अर्थात सफलता, सिद्धि अर्थात चमत्कार, सिद्धि अर्थात थोड़ी सी मेहनत से बहुत अधिक प्राप्ति, सिद्धि अर्थात हमारे संकल्प बोल कर्म का जादुई प्रभाव और प्राप्ति, सफलता हर व्यक्ति हर प्राणी यही चाहता है कि जीवन में हम कम पुरुषार्थ से कम मेहनत से अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। कई बार सफलता मिलती है और कई बार सफलता मिलने में देरी होती है और कई बार असफलता का भी सामना करना होता है। कई बार हम सिद्ध आत्माओं के महान आत्माओं की मार्गदर्शन से उन विघ्नों को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कई बार असफल होने पर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। तो लक्ष्य तो है मंजिल पर पहुंचना। प्यारे बाबा ने इस विषय में समय समय पर बहुत कुछ बताया है, तो ये चर्चा मात्र उसका रिवीजन मात्र है ताकि अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके बाबा के बताए हुए टिप्स युक्तियों को प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सिद्धि अर्थात सफलता संकल्पों की, बोल की, कर्म की, संबंधों की, लक्ष्य की, उसके लिए बाबा ने बताया कि भक्त लोग भी सिर्फ मूर्ति पर साधना करते हैं, मूर्ति के सामने, और उन मूर्तियों से ऐसी अलौकिक दिव्य शक्तियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। और मेरे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में रत हैं कि हमें सिद्धियां हासिल हो जाएं। तो जिन देवी देवताओं से भक्त आत्माएं सिद्धियां प्राप्त कर महान प्रभाव छोड़ती है समाज में संसार में, उसके लिए मेरे बच्चे अभी प्रसार्थ कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, चात्रक हैं कि हमें भी ये सिद्धियां मिल जाए। तो है ना अजीब बात कि हम सबसे सिद्धियां प्राप्त हुई मूर्तियों से, जड़ मूर्तियों से, और हम चैतन्य मूर्तियां उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रही हैं। तो ऐसा क्यों? तो बाबा ने उसका राज बताया कि सिद्धि का क्या आधार है। सिद्धि का आधार है शुद्धि। भक्ति मार्ग में भी जब सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो शुद्धि की विधि अपनाते हैं, भले वो अल्पकाल की होती है, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन, और वो अल्पकाल की शुद्धि की विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो भी अल्पकाल की ही होती है, और अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसका फिर नुकसान भी होता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा कि तुम्हें सदाकाल की सिद्धि मिलती है, तो शुद्धि भी सदाकाल की अपनानी पड़ेगी। तो सिद्धि की विधि है शुद्धि। तो शुद्धि किस चीज की? जैसे जादूगर होते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, हम सब देखते हैं, बड़ा कमाल दिखा दिया, कमाल कर दिया है ना, देखते ना जादूगरों के शो देखे होंगे। तो बाबा ने कहा वो है उनकी हाथ की सफाई। और ब्राह्मणों को क्या करना है? अपनी आत्मा की शक्तियां हैं, इनकी सफाई करनी है, यानी कि शुद्धि करनी है। तो आत्मा की शुद्धि, माना आत्मिक चेतना की शुद्धि, मन बुद्धि संस्कार की शुद्धि अगर हम करेंगे तो सिद्धि बाबा कहते हैं हथेरी पर है, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती हैं, नामी ग्रामी बन जाती हैं, लेकिन वहां सिद्धि आने के बाद में जब वो सिद्धि का प्रयोग करते हैं तो सिद्धि से क्या मिलता है, सिद्धि के प्रयोग से प्रसिद्धि मिलती है। और जब प्रसिद्धि मिलती है तो क्या होता है, मनुष्य आत्माएं आकर्षित होती हैं। जब आकर्षित होती हैं तो उससे सिद्धि का फल मिलने लगता है। सिद्धि के फल 10 तरह के हैं, नाम, मान, शान, पद, श्री श्री 108, 1008 आदि आदि पद भी मिलती हैं। नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, एक आश्रम, दो आश्रम, सिद्ध आश्रम, अनेक ब्रांचेस खुलती चली जाती हैं। धन, साधन, संपत्ति और महिमा, ये 10 फल प्राप्त होते हैं उन सिद्धियों से जब वो प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे वो प्रयोग करते चले जाते हैं वो सिद्धियों की जो शक्ति तपस्या से प्राप्त की उन्होंने वो क्षीण होने लगती है। बाद में वो सिद्धियां खत्म हो जाती हैं, नामाचार रहता है। और बाद में जब वो सिद्धि मैली हो जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है, तो फिर उसकी दुर्गति भी होती है सिद्ध आत्मा की, और बदनामी होती है, और फिर उसका लोप हो जाता है। आप देख सके हो ना, बहुत सारे बापू कितने चढ़े आसमान में, सारा संसार जाना, आज कहीं भी नहीं है, कहां पहुंचे हैं सब जानते हैं, है ना। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, ये उनका दोष नहीं, ये एक द्वापर कलयुग में माया के प्रभाव से बचना और इसके प्राप्तियों के आकर्षण से बचना बड़ा कठिन होता है। तो कहते हैं ना, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी कितने हजार वर्ष तपस्या की भक्ति मार्ग में, प्रैक्टिकली में तो बाबा ने कहा ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने समय लंबा खींच दिया है कि 10,000 साल तपस्या की, ये की, वो की, और अंत में क्या हुआ, एकदम पतन के रास्ते पे चले गए। इसलिए बाबा ने वो रास्ता थोड़ा सा बदला बच्चों के लिए, वहां सिद्धि पहले, शुद्धि पूरी नहीं होती है संस्कारों की, लेकिन यहां बाबा कहते शुद्धि पहले तो सिद्धि तुम्हारी दासी बन के आएंगी। वो लोग सिद्धि के आकर्षण में, सिद्धि बड़ी है और वो उसके पीछे भागते हैं, और बाबा कहते हैं सिद्धियां देवताओं के आगे पीछे घूमती हैं कि मेरे मालिक मुझे यूज कर लो। दुष्ट लोग यूज कर रहे हैं, अच्छे लोग यूज करें तो उनको भी खुशी हो ना कि हमारा सदुपयोग हो रहा है। तो देवताओं के पीछे सिद्धियां दासी की तरह भागती हैं, और ब्राह्मणों के पास कुछ के पास आ गई हैं, कुछ के पास आ रही हैं, कुछ के पास आएंगी, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा, स्वदेव आत्मा सिद्धि स्वरूप बनना ही है। फर्क यह है कितने परसेंटेज में, कितनी पावर में और कितना जल्दी। तो हम सबकी इच्छा है ना सिद्धि स्वरूप बने, है ना, सफलता तो हर एक कोई चाहता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है, अगर एक भी कम है तो सिद्धासन होता ना, हठ योगों का सिद्धासन तो दूसरा होता, जानते हैं आप सब, लेकिन हम राजयोगों का सिद्धासन के 4 कोने हैं, है ना। तो 4 बातें जरूरी हैं सिद्ध के अवस्था को प्राप्त करने के लिए। पहली है शुद्धि, चेतना की शुद्धि अगर हो जाती है तो मन बुद्धि संस्कार ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे, अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा देहिक चेतना, संसारिक चेतना से को बदल के आत्मिक चेतना में बदलो, जितना समय अधिक से अधिक बीते कर्म करने के लिए, बाबा के श्रीमत पर, बाबा के साथ, बाबा की याद में कर्म करेंगे तो कर्म योगी होंगे। और जहां बाबा है वहां माया नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है, लेकिन जब हम बाबा या बाबा के श्रीमत भूलते हैं तो विकर्म होते हैं। तो आत्मिक चेतना अगर रहे कि मैं आत्मा और परमात्मा बाबा मेरे साथ है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली सुकर्म होते चले जाएंगे, संस्कारों की शुद्धि हो जाएगी जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, और कर्म का फल और कर्म को बाबा को अर्पण करेंगे कर्म करने के बाद, तो उसमें अहंकार नहीं रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जो अच्छे अच्छे कर्म है कौन कराता है, ड्रामा अनुसार बाबा कराते हैं, और जो बुरे बुरे कर्म है ड्रामा अनुसार रावण माया कराती है ना, हम तो मात्र माध्यम हैं। तो अपने ऊपर गिल्ट कॉम्प्लेक्स ना रखें, लेकिन अटेंशन रखें कि हमें कोई मिसयूज ना कर ले। अगर यूज करना तो बाबा यूज करे ना, हमें माया यूज क्यों करे। लेकिन क्योंकि हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो बुद्धि की गद्दी पे कौन बैठेगा, एक ही बैठ सकता है, या तो बाबा बैठेंगे या तो माया बैठेगी। सीट खाली है तो कोई भी बैठ जाता है, सीट भरी हुई है तो दूसरा कोई बैठेगा ही नहीं। तो अगर हम अटेंशन रखेंगे कि बाबा हमारी बुद्धि की सीट पे बैठा रहे तो फिर माया ग्रामीण को चांस ही नहीं मिलेगा। तो चेतना अगर हमने अटेंशन दिया तो फिर माया रावण को चांस नहीं मिलेगा। बाबा की श्रीमत पर हम कर्म करेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे तो संस्कार शुद्धि होती चली जाएगी। दूसरा है मन। मन क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं माइंड इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि मन संकल्प उत्पत्ति का केंद्र है। लेकिन ये संकल्प आते कहां से हैं? ये संस्कार से आते हैं। जैसे ग्रामफोन में रिकॉर्ड कर देते हैं पर वैसी आवाज निकलती है, तो मन में संकल्प रूपी आवाज पैदा कहां से होती है? संस्कारों से। और संस्कार कहां से आए? पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों से। तो अगर संस्कार शुद्धि होती जाएगी तो संकल्प की शुद्धि भी होती जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो तब तक अटेंशन देने पर देखना पड़ेगा कि मन के संकल्प भी शुद्ध रहे। तो उसके लिए एक तो अटेंशन की विधि है, दूसरा बाबा ने कहा कि पुराने संस्कार हैं बहुत समय के, तो हम अधिक से अधिक मन को बिजी रखें। मन मना भव माना, या तो बाबा से बातें करें, या बाबा की दिव्य शिक्षाओं का चिंतन करें, या तो लेखन करें कोई भी टॉपिक पे। इसके लिए सबसे अच्छी विधि है अमृत वेले बाबा से एक थॉट ले लो कि बाबा आज किस टॉपिक पर हमें लिखना है, सोचना है, और फिर सारे दिन उस पर। जैसे कभी क्लास अगर आपकी टीचर कहती है आज आपको क्लास करानी है, तो क्या होता है उसी समय से मन बुद्धि चलने लगती है, सारा दिन बिजी उसी पे टॉपिक पे, और मन बुद्धि घूमती रहेगी तो बाबा नए नए पॉइंट्स बुद्धि में डालते रहते हैं। तो मन बिजी हो गया तो मन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है ना। तो जब हमने वो टॉपिक डाल दिया बुद्धि में कि आज ये टॉपिक पे हमें सोचना है, बोलना है, लिखना है, बोलने का मौका नहीं है तो लिख सकते हैं, नहीं मौका है तो आप भी ऐसे ही ग्लोब पे बैठे और विश्व की सारी आत्माओं को इमर्ज कर लें और उनको रोज 7 डेज कोर्स कराएं सर्व आत्माओं को। ये मनसा सेवा की विधि भी है और मन को बिजी रखने की विधि भी है और मन को शुद्ध करने की विधि भी है। दूसरी है बुद्धि की शुद्धि। तो बुद्धि की शुद्धि क्या, बुद्धि में क्या है? ज्ञान है या अज्ञान है? बुद्धि में मत है, श्रीमत है या मनमत है या परमत है? बुद्धि में अनुभव है। तो हम बुद्धि अब तक हम चलाते आए मनमत या परमत के आधार पे। दूसरों ने कहा सत्य माना, कर लिया, मन में विचार उठा सत्य माना, कर लिया, तो उससे क्या वह बुद्धि अशुद्ध होती चली गई। तो दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा ने सब बच्चों को दिया कि अब ज्ञान बाबा ने दिया तो हमें पता है हमें क्या सोचना है, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है। तो अगर हम मन और संस्कार कहेगा अरे कर लो कौन देखता है, अरे सोच लो कौन जान रहा है, अरे बोल दो धीरे से बाद में कह देना हमारा भाव ये नहीं था, है ना, सब कुछ कह रहे हैं जानबूझ के भी और फिर कह देते हैं अरे भाई चलो बाद में कह के छूट जाएंगे, लेकिन विकर्म तो हो गया। तो बुद्धि की शुद्धि माना बाबा के ज्ञान और बाबा की श्रीमत के अनुसार बुद्धि को यूज करेंगे और बुद्धि नेत्र अधिक से अधिक बाबा को देखे। दो शब्दों में अगर योग कहें, योग क्या है बाबा का? सी एंड टॉक। बुद्धि नेत्र से बाबा को देखते रहो, चाहे यहां देखो कर्म करते, और जब बुद्धि खाली है कर्म करने के लिए नहीं है तो सूक्ष्म वतन में उड़ जाओ, और बात करने के लिए जब कुछ नहीं बचे बाबा से, ब्रह्मा बाबा से रूरियान करने के लिए, तो परमधाम में उड़ जाओ। तो सी एंड टॉक, देखो और बात करो सूक्ष्म वतन में। सी एंड डू, देखो और कर्म करो, बाबा मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मैं कर्म कर रहा हूं। तो जब बाबा देख रहा है तो फिर तो विकर्म हो ही नहीं सकता। फिर तो कोई अगर बड़ा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, दादी या कोई बहुत पवित्र आत्मा, तो क्या आपको बुरा काम कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर खड़ा है तो क्या कोई चोरी कर सकता है, गंदा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब हम मान लेंगे कि वास्तव में खड़ा है हमारे साथ में, कल्पना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा मैं हर समय हर बच्चे पे मेरी निगाह है, अपने बच्चे पे हर समय मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है हर समय, कौन बच्चा क्या कर रहा है। मैं देखता नहीं हूं लेकिन चाहूं तो देख सकता हूं। तो बाबा, अगर आप बाबा कहते बच्चों के साथ मैं कंबाइंड हूं, आपने कहा बाबा और बाबा हाजिर, तो बाबा को आह्वान करो, बाबा हाजिर है। तो सी एंड डू माना कर्म योग, सी एंड टॉक माना सूक्ष्म वतन में रू रिहान, एंड सी एंड रिसीव परम धाम में बिंदु बाबा को देखो और बाबा से लेजर किरणें लो, आत्मा स्पंज की तरह पी रही है शक्ति को, तो आत्मा शुद्ध हो जाए, कर्म विनाश होने लगेंगे, आत्मा शक्तिशाली होती चली जाएगी। तो दो शब्दों का योग है, सी एंड डू कर्म योग, सी एंड टॉक रू रिहान, सी एंड रिसीव बीज रूप की अवस्था ज्वालामुखी योग। तो ऐसा करेंगे तो बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। तो मन बुद्धि संस्कार चेतना की शुद्धि अगर हो जाए तो आत्मा शुद्ध हो गई। आत्मा शुद्ध होते ही सिद्धि चालू हो जाती है, है ना? दूसरी विधि बाबा ने कहा कि जो जरूरी है सिद्धि के, सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के लिए, वो है एकाग्रता। तीन शब्द होते हैं, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है राजयोग मेडिटेशन। तीनों में क्या फर्क है? भक्ति मार्ग में लोग जब सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वो एक बिंदु पे या दीपक की लौ पे या मोमबत्ती की लौ पे अपना मन बुद्धि केंद्र करते हैं, कोई मंत्र का जाप करेंगे उसको देखते रहेंगे और उसको कहते हैं त्राटक। लेकिन वो स्थूल बिंदु है, स्थूल चीज है, जड़ चीज है, तो बुद्धि भी जड़ हो जाती है। सिद्धि तो आती है लेकिन बुद्धि जड़, क्योंकि जड़ से योग लगाएंगे जड़ बनेगा, लेकिन हमारा योग किस पे है? चैतन्य से है, रूरियान हो रही है। जड़ बिंदु से, जड़ मोमबत्ती से, कैंडल से क्या आप बात कर सकते हो क्या? क्योंकि बुद्धि को पता है कैंडल है, बिंदु है, तो जड़ बिंदु बना दिए हमने, इसमें कोई आत्मा थोड़ी है जो बात करेगी। लेकिन बाबा से तो बात करते हैं, रूरियान करते हैं, तो वो चैतन्य आत्मा से योग है, चैतन्य बिंदु से योग है, त्राटक नहीं है। तो उसमें चैतन्यता आएगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपकी जड़, तो उनमें जड़ बिंदु से भी त्राटक से भी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आधार एकाग्रता, इसे कहेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माना ध्यान एकाग्र करना जड़ चीज पे, किसी वस्तु पर कंसंट्रेशन है। लेकिन जब यही एकाग्रता आप किसी चैतन्य सूक्ष्म शक्ति पर करते हैं, आत्मा पे, तो उसे कहेंगे मेडिटेशन। और अगर इस मेडिटेशन यही एकाग्रता बिंदु पे हो जाए परमात्मा पे, तो फिर इसे कहेंगे राजयोग मेडिटेशन। तो हर एक के अंदर प्राप्ति सिद्धि की होती है, लेकिन सिद्धि का लेवल क्वालिटी वो अलग अलग होता है। तो परमात्मा को सर्वोच्च है, सागर है शक्तियों का, सिद्धियों का, सिद्धेश्वर है। तो अगर सिद्धेश्वर से योग लगाएंगे तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, ठीक है ना? तो एकाग्रता, हर सिद्धि का आधार एकाग्रता है। और एकाग्रता कब आती है? मन जब, मन क्यों भटकता है? एकाग्रता नहीं है माना शुद्धि नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर अशुद्धि है, तभी तो एकाग्रता नहीं हो रही है। कहते एकाग्रता भंग हो गई, आज संकल्प बहुत चल रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाहर के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में जब बुद्धि उलझ जाती है तो हमारी एकाग्रता भंग होती है। तो एकाग्रता का दूसरा आधार है बाबा के श्रीमत, क्या? एक बाप दूसरा न कोई, एक बल सब ब्राह्मणों को पता है। आप ब्रजवन भाई जी को जानते हैं, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, यज्ञ के स्तंभ हैं। तो एक बार ऐसे बैठे थे, उनका अनुभव, उनकी शिक्षा मैं आपसे शेयर कर लूं। तो ऐसे बाबा भाई साहब बैठे, तो भाई साहब ने कहा कि हम बच्चों को मालूम सब है, सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन करने में गड़बड़ हो जाती है। क्या करते हैं कि नियम तो, श्रीमत तो यह है कि एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बाप दूसरा भी कोई कोई। आधी बात मान ली, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा न कोई, लेकिन वो कहते शिव बाबा तो है, दूसरा भी कोई कोई चाहिए जीवन में। तो आधा माना ना 50%, तो त्रेता में पहुंच जाएंगे। सत्युग के संत का वो नहीं बनेंगे, 108 में नहीं आएंगे, 16,000 नंबर लग जाएगा पीछे त्रेता में जाके। ऐसे हम कहते हैं एक बल एक भरोसा। कौन सा बल? योग का बल, कौन सा योग? राजयोग, शिव बाबा से योग लगाने का है। एक शिव बाबा से प्राप्ति करनी है, बाकी सबसे प्राप्ति करानी है, सबको प्राप्ति करनी है शिव बाबा से है। तो एक बल एक भरोसा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि शिव बाबा का तो बल है ही है, भरोसा दूसरे का भी कर लेंगे। तो दूसरे कहते हैं भाई तेरा भरोसा, तेरे सारे हमारा काम चलेगा, तो मानव बुद्धि भटक गई ना। तो हमने आधी बात मानी, एक बल है ना, एक भरोसा। तो याद फरियाद में बदल जाती है, काम नहीं होता, सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, है ना, परेशान हो जाते हैं। तो उसका कारण हम आधा फॉलो करते हैं। तो कभी तो अनुभूति होती है 50% में, कभी नहीं होती, कभी बहुत खुश होंगे, कभी दिल शिकस्त हो जाएंगे, कभी उमंग उत्साह है तो कभी उदासी है। तो एकाग्रता नहीं हो सकती अगर हम मूल सिद्धांत एकाग्रता माना, एक के अग्र माना आगे, हमारे आगे एक ही होना चाहिए। कौन? शिव बाबा की याद, शिव बाबा की सेवा, शिव बाबा की शिक्षाएं। अगर उसमें मन बुद्धि हमारी बिजी है तो मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और अगर दूसरा भी है तो फिर मन भटकता रहेगा, फिर सिद्धि स्वरूप की अवस्था मुश्किल है। तो इसे कहते ना सिद्धि स्वरूप आत्माएं और सिद्धि की प्यासी आत्माएं, वो प्यासी वाली में नंबर आएगा, सिद्धि स्वरूप नहीं बनेंगे। फिर सिद्धि स्वरूप आत्माओं के आगे लाइन लगाएंगे कि भाई कुछ कल्याण कर दो, कुछ दृष्टि हम पे भी डाल दो। तो बाबा कहते हैं कि प्यासी आत्मा के बजाय प्यास बुझाने वाली आत्मा बनना है तो प्राप्ति सर्व प्राप्ति एक शिव बाबा से करनी है। कुछ करना तो बाबा से कहो, अगर वो कल्याणकारी है तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए हानिकारक है, हमें लगता है फायदेमंद है लेकिन वो नुकसान बाद में देगा। बाबा तो जानता है ना किस बात में नुकसान है किस में फायदा है, तो बाबा को संकल्प देकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए एक बाप दूसरा ने कोई, एक बल एक भरोसा। मन भागेगा, चरखा जब सीखते हैं तो धागा टूटेगा, उसमें दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लेकिन करते 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 जिन्होंने चरखा देखा है शुरू में टूटता है धागा, और फिर तो बात करती रहेंगी, ध्यान कहीं और है, फिर भी धागा टूटता नहीं है, पूरी पूनी बन जाती है। तो ऐसी आत्मा भी सिद्धि स्वरूप बन जाएगी अभ्यास करते करते। तो कभी कभी करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो कैसी भी जड़ बुद्धि है तमो प्रधान बुद्धि है, वो भी चैतन्यता में एकाग्रता जब आ जाएगी तो फिर होते चली जाएगी। तो शुद्धि से एकाग्रता बढ़ेगी, और साथ में परहेज है एक बाप दूसरे में कोई, एक बल एक भरोसा, तो सिद्धियां आ जाएंगी, है ना। अब आप औरों के आगे आकर्षित होते हैं फिर संसार आपके तरफ आकर्षित होगा, क्यों होना तो है, क्योंकि हमारे अंदर डीएनए किसका है। कहते हैं जैसा डीएनए होगा वैसा बच्चे में गुण आएंगे, जैसा डीएनए वैसे पेड़ पौधे में फल आएगा, फूल आएगा। तो हमारी आत्मा का डीएनए कौन सा है? शिव ब्रह्मा बाबा मम्मा का डीएनए है, है नहीं? तो ऐसा हो ही नहीं सकता शेर का बच्चा बकरी बन जाए, बन सकता है? शेर का बच्चा बंदर बन जाए, बन सकता है क्या? तो जब शिव बाबा के बच्चे हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे, बने पड़े हैं। लेकिन जल्दी बनेंगे या देर से बनेंगे, 100% बनेंगे या परसेंटेज में, ये फिर हमारा पुरुषार्थ है, ठीक है ना। तो पहली है शुद्धि, दूसरी है एकाग्रता, और तीसरा सिद्धांत है सिद्धि प्राप्त करने का निरंतरता, निरंतर। तो अभी जो संदेश था ना गुरुवार का, सुना आपने, आदरणीय हमारी शशि दीदी ने सुनाया कि बाबा ने कहा जैसे साइंटिस्ट होते हैं उनकी क्या विशेषता है, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर ली उन्होंने, उसका आधार क्या, वो जिस प्रयोग के पीछे लग जाते हैं रिसर्च के इन्वेंशन के, जब तक लगे रहते हैं जब तक सफलता नहीं मिले। तो बाबा भी बच्चों को अनुभूतियां कराता है, योग में विधियां बताते हैं, टचिंग होती है स्पेशल। हमें बड़ी खुशी हुई, आज तो बाबा ने बड़ा अच्छा अनुभव करवाया। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा सा खुशी खाई उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरी अनुभूति कराई पहली भूल गए, फिर तीसरी कराई दूसरी भूल गए। तो जैसे हम बचपन में जब बायोलॉजी पढ़ते थे मेडिकल में, तो हम भी ये करते थे, गर्भवती क्या करते थे कि वो मेंढक सिखाते हैं, मेंढकों का डिसेक्शन सिखाते हैं बायोलॉजी में। तो हम मेंढक पकड़ के लाते थे कुओं से कहीं से कि भाई चलो घर में डिसेक्शन करेंगे, और एक मेंढक थैले में डाला, फिर दूसरा डाला तो पहला भाग गया, तीसरा डाला तो दूसरा भाग गया, और घंटों करने के बाद भी थैला खाली। तो बड़े परेशान होते क्या करें क्या करें। फिर एक दिन आया भी चलो कोई डब्बा लेते हैं उसमें छोटा मुंह रखेंगे भागे नहीं और ढक्कन बंद कर देंगे, तो फिर पकड़ा डब्बे में डाला ढक्कन बंद कर दिया तो सारे मेंढक जमा हो गए। तो ऐसे ही मन में संकल्प रूपी मेंढक भागते रहते हैं, तो इनको एकाग्र करना है तो क्या करें, पकड़ कर उनको बार 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 उनको अनुभूति ला चेंज करें। जैसे घर में कोई चीज आ जाए तो बार बार यूज करते ना, एक बार एसी लगा दिया तो सुख मिला, लेकिन बार बार उसको यूज नहीं करा तो सुख मिलेगा क्या, संस्कार कैसे आएंगे। तो जो बाबा अनुभूति कराते हैं योग में या ज्ञान में कोई बात टच होती है उसको फौरन लिख लें और फिर बार बार प्रयोग करते रहे, कब तक, जब तक वो आप सिद्धस्त ना हो जाए। सिद्धस्त माना हाथों का खेल, जैसे कार शुरू में लाते हैं तो क्या होता है, चलाने में थोड़ा बहुत आई टकराई करी, फिर तो करते करते फिर अभ्यास हो गया। लेकिन बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लाए और फिर एक बार यूज करके चला के वो सिखा दे और फिर आप छोड़ दो तो सिद्धस्त तो नहीं बनेंगे ना, भले चीज हमारे पास है। तो सिद्धियां हैं, ब्राह्मण बनते के साथ ही बाबा देना शुरू करता है, हम यूज नहीं करते हैं और फिर रख के भूल जाते हैं और भूल जाते फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या, पहले तो बड़ा अच्छा था, ये भी था वो भी था, हम सोचते थे बाबा से कहते थे काम फट से होता था, अब तो पता नहीं क्या हो गया है, कारण ये कि हम भूल जाते हैं। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए तीसरी बात है निरंतरता, जब तक लगे रहे जब तक वो नेचुरल आपका अभ्यास ना बन जाए। और चौथा है रिवीजन, रिवीजन माना आप जैसे बताया बार 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 डायरी खोल के अनुभवों को रिपीट करें। चार चीज तो आवश्यक है और जो पांचवी चीज बहुत आवश्यक है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वो क्या, बाबा क्या कहते हैं जो पांचवी चीज बाधक है, बाबा कहते हैं बच्चों में निगेटिविटी तो बहुत कम है, ना के बराबर, बहुत कम है। क्या चीज बाधा डाल रही है संपन्न बनने में, सिद्ध बनने में, व्यर्थ वेस्टेज बहुत है, संकल्पों की वेस्टेज, शब्दों की वेस्टेज, धन संपत्ति, फैशन आकर्षण। जैसे बाबा ने कहा जूतियों में ध्यान है तो जूती जैसा जन्म मिलेगा, बहुत लोगों को जूतों का शौक होता है, बहुत से लोग कपड़े का शौक होता है, बहुत से को खाने का शौक होता है। अब भगवान के बच्चे चीजें तो मिलेंगी प्रारब्ध से, लेकिन आपकी बुद्धि आसक्ति रही उसके अंदर तो क्या होगा, जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। सतयुग के अंदर अगर खाने में आ सकती है तो किसी राजा के भंडारे में जगह मिल जाएगी, राजा तो इतना चखेगा एक एक चम्मच, बाकी सब माल तो उसको ही मिलेगा ना, जिसकी आसक्ति होगी जो बनाने वाला होगा है? इतना सारा बनाएगा सारा बचा वो ही खाएगा जो ढेर सारा, तो क्या कहां जन्म, इच्छा तो पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या बनना है, राजा बनना है या भंडार की सेवा करने वाला, यहाँ जो करेगा वो तो राजा बनेगा सतयुग में, सेवा बाबा की है, लेकिन वहां जन्म कैसा मिलेगा, जूते जैसा, हलवाई जैसा, टेलर जैसा, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाएगा राजा के लिए, अपने लिए बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना लेगा। तो बाबा ने कहा ये भी हमें अटेंशन देना है कि हमें क्या करना, व्यर्थ से मुक्त होना है। तो व्यर्थ से मुक्त होना ही सिद्धि स्वरूप की अवस्था को पक्का करना है, ठीक है ना। तो क्या चीज व्यर्थ पैदा करती है मन में, संकल्प व्यर्थ, बोल व्यर्थ, क्या उसके लिए क्या करें। तो एक बार क्या हुआ, एक किसी ने कहा, कबीरदास जी बैठे थे कहते हैं तो अपनी कुटिया में बैठे थे, अपने साधना कर रहे थे, तो एक व्यक्ति गुजरा देखता रहा और उसने कबीरदास जी से कहा, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, कोठरी माना निवास स्थान, गलकटियन माना गला काटने वाले कसाई बूचर, उनकी कॉलोनी में उनके मकानों के आसपास तू रह रहा है, मांस लटका हुआ है, बूचर्स बैठे हुए हैं, कैसा निगेटिव वायुमंडल वातावरण है, तो जैसा संत कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास। अब एक बार का कबीरदास जी अपने साधना में काम में लगे रहे, चुप लगा गए, तो बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं आप इग्नोर कर दो। अब उसको जवाब नहीं मिला, बेचैनी, फिर कहा कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, वो फिर भी चुप लगा गए, वो फिर बेचैनी और बढ़ गई, फिर उसने कहा कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, अब कबीरदास जी बोले मानेगा नहीं, तो कबीरदास जी कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। अरे वो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तू क्यों उदास हो रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। तो हम देखते हैं जीवन के अंदर, हम कहीं भी रह रहे हैं, लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में, बाहर की दुनिया में बहुत कुछ होता है जो अच्छा होता है, बहुत कुछ होता है जो गलत होता है। विवेक कहता है अब तो ज्ञान का नेत्र खुल गया है, तो इसलिए अब तो और भी अच्छा पहचान लगी भाई ये गलत है। तो हम देखकर बड़ा बेचैन होते हैं, चोर चोरी करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदार कहलाने वाला आदमी चोरी करे तो हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं, उससे तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं ईमानदारी की। लेकिन व्यक्ति ऐसा करे, संत आत्मा गलत काम करे, ज्ञानी गलत काम करे, तो हमारे संकल्प चलते हैं, और चलते हैं तो फिर बहुत चलते हैं, और चलते चलते इतने होते हैं कि हमारा योग भंग हो जाता है, सिर भारी और हम परेशान हो जाते हैं। तो जब परेशानी होती है तो क्या होता है, जहां संकल्प विकल्प में बदल जाते हैं और वेस्ट में बदल जाते हैं, और जब वो विकल्प शक्ति भर जाती है उनमें तो क्या होता है, योगियों में प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र होती है, खुश भी बहुत जल्दी होते हैं और नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं, शुरू की स्टेज ऐसी होती है, संयम नहीं रहता है। तो वो जब बेचैनी बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, वो बेचैनी अंदर भर गई तो निकालेंगे, जो प्रेशर बन गया ना, प्रेशर कुकर रिएक्शन, घंटे दो घंटे दो चार दिन तो हजम कर लिया, जैसे गैस बनती रहती है फिर एकदम सीटी बजती है नहीं, और जरा सा हाथ लगाते सीटी बज जाती है, बहनों को माताओं को पता है ना, ऐसी प्रेशर कुकर रिएक्शन चालू हो जाती है मन के अंदर, फिर जहां कोई मौका मिला बस खूब सिटी बसती है दूर दूर तक, और वो बात सारी वायुमंडल वातावरण बनता चला जाता है, फिर एक नाराज फिर दूसरा भी आएगा बोले हाँ हाँ ये तो है ही ऐसा, फिर तीसरा भी आएगा हाँ हाँ ये तो है ही ऐसा, और फिर ग्रुप बन जाता है उनका, और उनका ग्रुप बनते बनते फिर वो अपनी पोजीशन से, स्वमान की पोजीशन से हटके अपोजिशन में लग जाते हैं कि चलो भाई जरा इसको भी सामने वाले को ठीक कर दे, ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी जो शुभ भावना, इसलिए कह रहे हैं हम, तो जहां हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं, उस सीमा में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर तो समस्या आएगी ना, तो फिर टकराव होता है। तो एक कारण है व्यर्थ, हम दूसरों की कमी कमजोरी देखते हैं जिसके कारण हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो पहले मन में चलेंगे, जब नहीं समा पाएंगे तो फिर बोल में आएंगे, जब नहीं समाएंगे तो कर्म में आएंगे, ऐसे योग चालू कर देंगे, है ना। तो बाबा ने कहा पर चिंतन, पर मत और पर दर्शन, दूसरे में कमी देखना, फिर सोचना, चिंतन है ना, पर मत, दूसरों के मत के हिसाब से लोग कहेंगे हाँ कहो ना जाके, तुम्हारा फर्ज है ना, अन्याय को सहना भी अन्याय है, पाप को देख के चुप रहना भी पाप है, तो पुरानी बातें बहुत सी शिक्षाएं मिलेंगी, तो हम सब इकट्ठे होके फिर अपोजिशन में लगते हैं। तो बाबा कहते जब तीन पर मिल जाते हैं तो फिर तो माया के पर लग जाते हैं ना, तो फिर चौथा काम होता प्रदर्शन, स्ट्राइक, हड़ताल है ना, जलसे, फिर सब होता है, और प्रदर्शन जब होता है टूट फूट तोड़ फोड़ तो होती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो क्या करना पड़े, ये तीन परों को काटो, और एक पर कौन सा, परोपकार। तो कौन सा परोपकार, पहले तो अपने पे ही करो, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपना कल्याण करो। उन बातों से क्या, कबीरा तेरी कोटरी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। वो अपना भाग बिगाड़ रहा है, 21 जनों का भाग बिगाड़ रहा है, तुम क्यों परेशान होते हो। जिन आत्माओं ने स्वचिंतन किया वो अष्टरत्न 108 की माला में पहुंच गए, कर्मातीत होके महाराजा बन गए, और जो युद्ध कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं योद्धा बन जाते हैं योगी से, क्योंकि दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं, जबकि अपने अंदर के संस्कार भी शुद्ध नहीं हुए, तो उसकी वजह से संगठन में भी हड़ताल। तो बाहर की दुनिया में भी यही होता है, सरकार के खिलाफ, इसके खिलाफ। तो हमें क्या करना है, हम तो अपने को शुद्ध करने के लिए बाबा के पास आए ना। तो अगर हम कहां हस्तक्षेप नहीं करना है दूसरे के, जैसे पुलिस का होता है ना, हर एक की चौकी अपना अपना क्षेत्र है, उसके दूसरे के क्षेत्र में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही देखो मिनिस्टर्स दूसरे के स्टेट में जाके अपना कानून चलाओगे तो हंगामा हो जाएगा, और दूसरे के देश में जाओगे तो मिसाइल चल पड़ेंगे, एटमों की बार की तैयारी हो जाएगी, है ना। दूसरे के अधिकार क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में हस्तक्षेप करना गलत है। अपने क्षेत्र में जहां आप निमित हैं फर्क है, अपने बच्चों की गलती पे आप समझाएंगे फर्ज है आपका, लेकिन पड़ोसी के बच्चे की घर में जाकर समझाएंगे तो गड़बड़ काम हो जाएगा। इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में हम रहें तो हमारे चिंतन, वो भी एक बार कहने का है। दादा विश्व रत्न को जानते हैं आप सब, अष्टरत्नों में नंबर आता है, तो दादा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, सेवा करो। तो दादा ने एक बार, जब शुरू में ज्ञान मधुमेह में 10 साल में रहा, तो दादा ने एक दिन कहा कि डॉक्टर बाबा का हर बच्चा 3 महीने में मुरली सुनकर परफेक्ट हो जाता है, ज्ञान पूरा आ जाता है, उसके बाद उसको बस इशारा करना होता है अगर आप निमित हो तो, नहीं तो इशारा भी नहीं करना। तो क्या बोले, उसके जो बाबा की 4 पेज की मुरली से नहीं सुधरा तो तुम्हारे क्या शिक्षा सुधरेगा क्या? भगवान की 4 पेज की मुरली से जो नहीं बदल पा रहा है तो वो क्या तुम्हारे कहने से बदलेगा या किसी और के कहने से बदलेगा? कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोड़ दो। लेकिन क्या करो, शुभ भावना शुभ कामना, उसको योग का सहयोग दो तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, कमाई होगी और उसको भी शक्ति मिलेगी। कि कोई भी आदमी संसार में जानबूझ के गलती नहीं करता, अगर उसको ये समझ होती करते समय कि मैं गलती कर रहा हूं, वो गलती करेगा ही नहीं। लेकिन उस समय क्योंकि परख शक्ति नहीं होती है, निर्णय शक्ति नहीं होती है, तो वो सही समझ के करता है। हर व्यक्ति सही समझ के करता है, गलत काम भी सही समझ के करता है, वो बात अलग है कि वो गलत है। तो इसलिए उसको रियलाइजेशन पावर की जरूरत है, परख शक्ति की जरूरत है, कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है। कई बार कहते हैं ना, शराबी भी कहता है मैं जानता हूं शराब नुकसानदायक है, लेकिन जैसे ही सांझ आती है रोज सुबह कसम खाता हूं और रात को आते ही अनकंट्रोल्ड, तो कंट्रोलिंग पावर की कमी है। तो है तो परिवार हमारा, तो क्या करें हम? तो क्या छोड़ दें ऐसे ही, नुकसान होने दें, गलत काम होने दें? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़े, शक्तिशाली ग्रुप बनाना चाहिए संगठन अपना, जो ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशन, क्योंकि बाबा तो योग की सिद्धि दे रहे हैं ना, तो शक्तिशाली ग्रुप ऐसा वाइब्रेशन फैलाए विघ्न विनाशक, जो उसके वाइब्रेशन से उन आत्माओं में भी क्या आ जाए, परखने की शक्ति आ जाए, रियलाइजेशन पावर मैं गलत कर रहा हूं, कंट्रोल करने की शक्ति आ जाए, परिवर्तन करने की शक्ति आ जाए। और जब 3 शक्ति मिल गई उसे, बाबा से हम मिलते हैं, दृष्टि लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि बाबा दृष्टि देता है तो शक्ति मिलती है, तो हमारे अंदर रिलाइजेशन पावर, निर्णय की शक्ति, अपना परिवर्तन की शक्ति आ जाती है, वो परिवर्तन हो जाता है। तभी तो बाबा ने देखो कैसे कैसे महारथी सब साधारण से आए थे दुनिया से, कहां पहुंच गए। तो बाबा से शक्ति लेकर हम अगर देंगे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, तो व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। तो पहली है परचिंतन, ये पर काटेंगे तो व्यर्थ खत्म होता चला जाएगा। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, यज्ञ का मालिक बैठा है उसका यज्ञ है वो जाने, और जो कर्म कर रहा है वो जाने, हम बीच में क्यों? हाँ, शुभ भावना से इशारा दे सकते हो, अगर आपको लगाए कि वो सामने वाला सुन लेगा और जो कह देगा हाँ हाँ तेरे अंदर भी तो 50 कमियां गिनवाऊं क्या, तो कमियां तो है संपूर्ण काम बने हैं हमारे, उसके अंदर 5 होंगी शायद मेरे अंदर 5 होंगी 50 होंगी तो उसे ज्यादा ही होंगी, वो सारी माला पहना देगा आपको कमी होगी, आप एक माला एक दाना दोगे कमी का वो 50 बना देगा, पूरी माला बना देगा 108 की आपको, है ना। इसलिए सलाह नहीं देनी है। हाँ, निमित हैं आप, इंचार्ज हैं डिपार्टमेंट के या किसी के, या बहुत मित्र है आपका, धीरे से इशारे में छोड़ दो, फिर बाबा जाने वो जाने, है ना। कर सकते हैं तो योग बल दे दो, इतना योग बल आपके पास है तो आप योग की शक्ति उसके लिए योग कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी बात क्या है, व्यर्थ से मुक्त करने के लिए, एक हम जब ग्लोबल में थे, एक बड़े बुजुर्ग थे, ज्ञान में तो नहीं चलते थे लेकिन ज्ञानी थे, जैनी थे, या हमारे एक बी के उनके फादर थे, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, लो शुगर, और एकदम उन्होंने शरीर एकदम अशरीरी होकर ट्रांस जैसे जाते हैं चले गए। खैर, कोशिश करके जल्दी ग्लूकोज चला चलो कि उनको बाहर होश में आए, तो बहुत खुश हो गए। तो ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे, प्यार हो गया हमको। तो हमने कहा, डिस्चार्ज हो रहे थे, बाबू जी कोई आप अपना अनुभव की बात दो। तो बड़ी अच्छी बात बताई कि ये तुमने जान लिया व्यर्थ क्यों चलता है, लेकिन करें क्या, सिद्धि स्वरूप बनना है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात की, शायद आपके भी काम आ जाए। उन्होंने कहा कि बस एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या करना है? बोले स्वयं में बस, स्वयं में बस, पर से खस, चूना चस, बस इतना करे तो बस। स्वयं में बस, स्वयं माना आत्मा, निज आत्मा में बस। माना जैसे अपने घर में ही हम रहते हैं तो अपने में बिजी रहते हैं, घर में कमी है, ये ठीक करना है, ये करना है, सजाना है। स्वयं में बस, अंतर्मुखी होके अपने अंदर, स्वयं माना स्वयं चिंतन में, अपनी कमी देख, अच्छाई भर, अपनी विकृति देख, सुधार कर। तो स्वयं में बस, अपने में बस रहे, अपने में रम जा, अंतर्मुख होके अपने बारे में सोच, अपने में देख। स्वयं में बस, पर से खस, खस माना खिसकना, गो अवे, पर जो पर माना दूसरा, व्यक्ति प्रकृति परिस्थिति दूसरी चीजों से दूर चले जाओ। स्वयं में बस, पर से खस, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और प्रदर्शन, ये चार चीजों से परे हो जा, पर से खस खिसक जा, गो अवे, चू ना चस, चू चूचू किसे कहते हैं, कौन बोलता है चूचू ज्यादा, चिड़िया चीची करती है, चूहा चूचू करता है, तभी तो नाम चूहा पड़ा ना, चूहा है चूचू करने वाला। तो कहीं चूहा होगा पहचान लोगे ना कौन सा प्राणी है, तो उसकी आवाज से पहचान लोगे चूहा है। तो चूहे की क्या विशेषता है, चूचू करता रहता है जब खाली होता है, और या फिर क्या करेगा, जो चीज हाथ में आ गई सामने उसको इतना बारीक काटता है, इतना बारीक काटता है कि कबाड़ी भी नहीं, कबाड़ी के लायक भी नहीं रहता। चलो अखबार है कुछ है, आप बेच तो दोगे ना कुछ किलो में, लेकिन वो इतना बारीक कर देता है टुकड़ा उसका कि वो कबाड़ी भी नहीं खरीद सकता, उसको उठाकर फेंकना पड़ेगा। तो चूहे की विशेषता है। तो चूहे पे किसने विजय पाई, सवारी कौन करता है, गणेश। और गणेश का एक नाम है सिद्धि विनायक, है जो सिद्धि का देवता है गणेश, देवताओं में सिद्धि विनायक नाम पड़ा। तो उसने उसकी सवारी चूहे पे दिखाई। अब चूहे पे कोई बैठ सकता है क्या, है नहीं बैठ सकता है। वो मात्र क्या मतलब कि चूचू चूचू नहीं करो, तो चूचू क्या, अगर उसको वैसे लेते इंग्लिश में कहते क्यों 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 क्यों, बाबा कहते ना क्वेरी, ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कैसे होगा, क्यों होगा। तो अगर क्यों क्यों करने की, चू चू करने की आदत है तो उसके लिए विधि है कि आदत पड़ी हुई है अब कैसे करें, तो उसको ज्ञान में लगा दो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम क्यों आए। तो क्यों 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 को करना ही है, अगर चू चू करना ही है तो ज्ञान की चू चू करो, और नहीं तो अगर ज्ञान की नहीं करो तो बुद्धि कहीं तो चलेगी, या तो अच्छे में या बुरे में, तो वो चू चू वहां चालू हो जाएगी, माया की चू चू चालू हो गई। और बाबा कहते एक बार क्यों लगी तो क्यों लग जाएगी लंबी लाइन संकल्पों की, विकल्पों की, और जब ज्यादा देर चल गई तो माथा भारी, बीपी हाई, शुगर हाई, और जब हजम नहीं होगा तो किसी ना किसी को दोस्त बना के निकालोगे, वेंटिलेट करोगे, उसका दिमाग जरूर खराब करोगे, कीड़ा वहां पहुंचा दोगे, वायुमंडल वो दूसरे से कहेगा, वो तीसरे से कहेगा, पूरा ग्रुप बन जाता है ना, ट्रेटर्स का ग्रुप बन जाता है। तो चूचू चूचू नहीं करने का है, करना है तो ज्ञान की चूचू करनी है, ठीक है ना। तो जिसने चूहे पर सवारी कर ली वो गणेश बन गया। तो हमारे यज्ञ में कौन है गणेश, सर्टिफाइड गणेश कौन है, हमारे आदरणीय जगदीश भाई, है ना, फोटो है ना। हाँ, तो वो बाबा गणेश कहते थे। तो उन्होंने वो मन की जो चूचू निगेटिव वाली थी उसको रोकने के लिए क्या किया, वो सारी मन बुद्धि को उन्होंने ज्ञान में लगा दिया, सारा साहित्य जितना भी है, मेजोरिटी साहित्य यज्ञ में जगदीश भाई जी का है, भगवान के द्वारा, जगदम्बा सरस्वती के द्वारा वरदानी आत्मा, तो नंबर वन गए। तो उन्होंने ज्ञान के चिंतन में, ज्ञान चिंतन में बुद्धि लगा दी। जब ज्ञान का चिंतन करेंगे तो बुद्धि में तो आएगा ना, अपने भी स्वयं चिंतन तो हो ही जाएगा। तो उस चूचू को उस चूचू में बदल दिया, इसलिए गणेश कहला गया, चूहे की सवारी, चूहे को असुर दिखाया गया है, तो ये चूचू। और दूसरा चूहा वेस्ट बहुत करता है, क्या वेस्ट करता है, वो तो स्थूल चीज हो गई। आत्मा का क्या वेस्ट करता है, संकल्प शक्ति जो भगवान ने संकल्प शक्ति दे रहे हैं, योग की शक्ति जो आपने प्राप्त की मेहनत करके घंटों योग लगा के, भट्टी करी, इतना समय टाइम मनी एनर्जी खर्च किया, वो सारी शक्ति वो चूहा इतनी बारीक कर देगा कि वो आपके किसी काम की नहीं रही, कूड़ा और बन गया उसका। और यहाँ कूड़ा होता है, वहां क्या होता है, कीड़े आते हैं, मच्छर मक्खी लगेंगे ना, तो वो फिर हमें काटते हैं सबसे पहले। तो इसलिए योग की शक्ति हमारी वेस्ट चली जाती है। और योगियों के लिए एक समस्या और है, जैसे इन्फेक्शन होता है, अगर इन्फेक्शन ब्लड में चला जाए तो ब्लड को पस में बदल देता है, सेप्टिसीमिया कहते हैं, और वो लंबा चल जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है ऑर्गेन फेलियर में। तो ऐसे ही ब्लड के अंदर कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं। तो जब योग की शक्ति तो मिली बाबा से और उसमें कीटाणु चला गया विकल्प का, नेगेटिव संकल्प का, व्यर्थ संकल्प का, तो बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए योगियों के संकल्प विकल्प में भी ताकत होती है, मुंह से निकल जाए तो दुर्वासा बन जाते हैं, फलीभूत हो जाता है, शक्ति है ना। तीर मारा, दुष्ट को मारा तो मर गया, अच्छे को मार दिया तो विकर्म बन गया कोई। तो शक्ति तो आ जाती है योगी में, लेकिन शक्ति को अगर कंट्रोल नहीं किया, सही जगह यूज नहीं किया, तो दुर्वासा विकर्म विनाश भी, विकर्म बढ़ जाते हैं बजाय विनाश होने के। तो इसलिए बिजी रखे मन को, बुद्धि को, तो फिर चूहे पे कंट्रोल आ जाएगा। तो ये चूचू स्वयं में बस, अपने में मस्त रहे, जो सेवा मिली कर, जो तेरा अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र ना कहे सेवा क्षेत्र है, वहीं तक बुद्धि रखो, बाकी वो जाने। स्वयं में बस, पर से खस, पर चिंतन, परमद, परदर्शन और प्रदर्शन, जब फोर्थ स्टेज है, जब बिल्कुल हजम नहीं होता, ग्रुप बड़ा बन गया तो फिर जुलूस निकाल देंगे, हड़ताल है नहीं। चूना चस, चूहा नहीं बनना है। और चस, चसकना कहते ना, जिन लोगों को चोट लगी कहीं से, तो जब बरसात आती है, सर्दी आती है तो दर्द करती है, तो बड़ी बेचैनी हो जाती है, अरे भाई क्या हुआ, अरे पुरानी चोट चसक रही है ना, है ना। और किसी दूसरे को अगर चोट मार दें आप जाने अनजाने, तो उसकी चोट भी चस्केगी। जब चोट चस्केगी तो क्या कहेगा, अरे फलाने ने मारा था ना डंडा, ये उसने नुकसान किया था ना। तो वो उस समय क्या करता, हर बार याद करेगा, जब भी दर्द उसका आएगा, चाहे वो मन का दर्द हो, गंदी बात कह दी हमने कोई दुखी करने वाली, या उसको स्थूल नुकसान कर दिया, धन का नुकसान, तो जब भी वो नुकसान याद आएगा तभी वो आपको बद्दुआ देगा, अरे उसकी वजह से हुआ ना। तो कितनी बद्दुआ, जिंदगी भर देता रहेगा। तो जब दर्द हो, चू ना चस, तो चू तो समझ लिया, चूहे को बदलना है, विजय प्राप्त करनी, सवारी करनी है, कंट्रोल करना है। और चस माना किसी को कष्ट नहीं देना है। किसी ने कहा ना कि एक बार हम एक संत के पास गए भक्ति मार्ग में, तो गुरु जी साथ थे लौकिक, तो वो संत सिद्ध पुरुष थे बहुत बड़े, तो नाथ संप्रदाय के, तो ऐसे उन्होंने कहा जी कुछ हमारे लिए उपदेश दो। तो उन्होंने एक दो लाइन मुझे आज तक याद है, ज्यादा भाषण कुछ नहीं, दो लाइन, उन्होंने कहा पर पीड़ा नहीं दोष गुसाई, और पर हित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास जी ने कहा ना, पर पीड़ा नहीं दोष, अगर तुमने कष्ट दे दिया किसी को, इससे बड़ा कोई दोष नहीं, पर पीड़ा नहीं दोष गुसाई, और पर हित सरस धर्म नहीं भाई। इसके अलावा उन्होंने तीसरा सेंटेंस बोलकर ही नहीं दिया, और बस दृष्टि दी बैठ गए। तो यह कि कम शब्दों में सब कुछ सिखा दिया उन्होंने, कि भाई जितना हो सुख दे दो, दुख तो देना ही नहीं है, लेकिन संस्कार है, अगर पिछले हिसाब किताब है, संस्कार है, तो क्या करें। तो अगर दर्द हो जाता है, कोई चोट चसकती है, तो क्या करते हैं हम, मल्लम लगाते हैं, डाइक्लोफेनिक, बोवरान, बोलिनी वगैरह वगैरह। तो दर्द का मल्लम कौन सा मल्लम, खुद को चसक है तो कौन सा मल्लम। बाबा ने कहा ड्रामा हिसाब किताब, हिसाब किताब था, जब दूसरे से चोट लगी तो समझो भाई हिसाब किताब था, ड्रामा अनुसार वो भी बेचारा मजबूर था, ड्रामा के वश नुकसान हो गया, तो ड्रामा का मल्लम लगाएंगे तो आपकी चोट चसकेगी नहीं, मुंह की चोट चसकेगी नहीं। और अगर दूसरे को चोट लग गई तो क्या करेंगे, उसका प्रायश्चित कर लें। कैसे करेंगे, एक तो सॉरी कहेंगे, अपनी गलती मान लेंगे, हमसे भी गलती हो गई आपके प्रति। अगर मुंह दर मुंह नहीं बोल सके, शर्म आती है, संकोच आता है, तो मेंटली बोले योग के बाद में, उसको इमर्ज करके उससे माफी मांगे बार बार, भाई मैंने ये गलती की है, मैं स्वीकार करता हूं। हो गई अनजाने में, जा जान के जो भी हुआ, तो बार बार माफी मांगेंगे तो संकल्प पहुंच जाएंगे। लेकिन खाली माफी से काम नहीं बनेगा। आपने किसी का गिलास तोड़ दिया, माना 20 रुपए का नुकसान हो गया, और आप सॉरी सॉरी कहते रहे तो भले चुप तो लगा जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन अंदर तो पछतता रहेगा, यार मेरा गिलास तोड़ दिया उसने, सॉरी सॉरी कहकर निकल गया। तो उसकी चसक कब खत्म होगी? जब कहेंगे भैया 20 का गिलास टूटा तो 10 रुपए पेनल्टी के और ले, 30 रुपए ले ले। अब वो आपको बद्दुआ देगा क्या? कहेगा यार 20 का माल था, 30 की प्राप्ति हो गई। तो भैया रोज तोड़ दू क्या? कोई बात नहीं है, रोज मत तोड़, लेकिन चलो तुझसे कोई शिकवा नहीं है, तेने गलती मान ली, 20 के 30 दे दिए मुझे। तो उसकी चसक, यानी कि आपने उस पर बॉल नहीं लगा दिया, दर्द का मलहम लगा लिया। तो खाली सॉरी कहने से कुछ नहीं होता है, उसका प्रायश्चित यानी कंपनसेशन भी दे दो। नुकसान हो गया, आप किसी को चोट पहुंच गई, हड्डी टूट गई, कुछ झटका मार दिया, हाथ लग गया, अब उसकी वो तो हो गया सो हो गया, अब उसका इलाज के पैसे दो, खाने पीने के पैसे दो, ठीक हो जाए, काम धंधे का नुकसान आपने अगर पूर्ति कर दी, कंपनसेशन कर दिया, तो चस्केगा नहीं, फिर बद्दुआ नहीं देगा। ठीक है? तो स्वयं बस पर से खस चूना चस, इतना करे तो बस सिद्ध हुआ पड़ा है, सिद्धि स्वरूप अवस्था फिर दूर नहीं है। तो पहली चीज है शुद्धि, दूसरी है एकाग्रता, तीसरी है क्या बताया, निरंतरता, चौथा है रिवीजन, जो खजाना मिला, जैसे बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, रिवाइज करो बार बार, बाबा का बच्चा बनने के बाद क्या क्या मिला, आज योग में हमें क्या अनुभूति हुई, उसको बार बार रिपीट करें, तो वो सिद्धियां बन जाएंगी आपकी जो अनुभूतियां हैं। और पांचवा है व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों भया आसा। कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता कर्म फल से, कहते देवता भी मुक्त नहीं है, तो देवता तो विकर्म नहीं करते, लेकिन सो कॉल्ड देवता जो द्वापर में जाते हैं कहलाते तो देवता ही है, आज तक भी कहते हैं सरला देवी, फलानी देवी, फलाने देव, भले देव करेक्टर नहीं है उनके अंदर, लेकिन लकब तो चला रहा है, टाइटल तो चला आ रहा है ना उनके अंदर, तो वो हम उसको ध्यान दें, तो दूसरा कुछ भी करता रहे इशारा कर दें ताकि उसका नुकसान ना हो आगे, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है छोड़ दें उसको, बाबा की मुरली समझा देगी उसको, अपने आप ही समय समझा देगा। ठीक है? और दूसरा स्वयं में बस, इलाज क्या है समस्या का, कारण तो जाना, निवारण क्या है, निवारण वही तीन शब्दों का है, स्वयं में बस पर से खस चू ना चस, इतना करे तो बस सिद्ध हुए पड़े हैं। ठीक है? आपको अच्छा लगा हो, जो चीज अच्छी लगे उसको विवेक की कसौटी पे तोलो, अच्छा लगे तो स्वीकार करो, नहीं छोड़ दो। अगर निर्णय नहीं हो तो प्रैक्टिकल जीवन में, अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करो, अगर सिद्ध हो जाए आपका एक्सपेरिमेंट तो जीवन का हिस्सा बना लो, नहीं हो तो छोड़ दो। और अगर कुछ गलत हो, मेरी बात जो मेरे मुख से निकली, मेरी नहीं बाबा की बात, शिक्षाएं, अगर फिर भी उसका कुछ शब्द या भाव आपको लगाओ गलत है, तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं मैं क्षमा याचना करूंगा, मेरा निर्लिप्त भाव से जो कहा, जो अच्छा लगे रखा, जो खराब लगे छोड़ दो, है ना? तो ये ध्यान करेंगे तो मैं समझता हूं कि सिद्धि स्वरूप अवस्था दूर नहीं। ठीक है? ओम शांति।